तफसीर सूरत हूद आयत नंबर 96 से लेकर 99 तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी की तरफ सरसरी इशारा किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वलकद अरसलना मूसा बिआयातिना वसुल्तानिम मुबीन, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों और खुली खुली सनद मामूरियत के साथ भेजा। देखिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर थे, इनकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि इनके भेजने वाले कौन थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि मैंने भेजा था, और जब मैंने मूसा को भेजा तो बी आयातिना अपनी निशानियों के साथ भेजा था। बी आयातिना से मुराद मुफस्सरीन कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को जिन मोजज़ात से नवाजा था उसकी तरफ जो है वो इशारा किया गया है। और सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 101, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 वाज़े निशानियां देकर भेजा था, और मुराद है वो मोजज़ात जो के मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए गए थे। फिर इसके साथ ही फरमाया वह सुल्तान मुबीन, सुल्तान जो है इसके मानी है कि सुल्तान जैसे वो खास निशानी, वो खास दलील जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को अता की थी, क्योंकि सुल्तान जो है ये दलील के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मुबीन रोशन वाजे, तो दलील रोशन जो मूसा अलैहिस्सलाम को अता की गई थी। और इसके मानी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें जो अता का मौजज़ा दिया था, मुफस्सरीन कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो सुल्तान मुबीन से मुराद वो जो है वो अता का मौजज़ा है कि जब वो मौजज़ा फिरौन दरबारियों जादूगरों के सामने जो है वो पेश हुआ, तो इससे जो है वो खुला हुआ गलबा मूसा अलैहिस्सलाम को अता हुआ। तो असा की हैसियत जो है वो सुल्तानी मुबीन की थी, और ये जो दलील थी ये बड़ी ही खुली दलील थी। और बाद मुफस्सरीन जो हैं वो ये भी कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक नहीं यके बाद दीगरे जो है वो कई मौजों से जो है वो नवाजा था, जैसे कि 9 मौजे। तो बाज कहते हैं कि इससे मुराद जो है वो बिआयातिना से मुराद 9 मौजे हैं, बाज कहते हैं कि इससे मुराद तौरात है, बाज कहते हैं कि सुल्तान मुबीन से मुराद मौजात हैं, और बाज कहते हैं कि इससे मुराद जो है वो आयात तिस्सा यानी 9 मौजे हैं, लेकिन सुल्तान मुबीन से मुराद वो असा है जो कि रोशन दलील था, और ये बड़ा अजीम शान मौजा था, तो उसकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास तौर पर इशारा किया। तो ये मौजा देकर कहाँ भेजा था? इला फिरौना व मलाही, फिरौन की तरफ व मलाही और इसके सरदारों की तरफ, इसके दरबारियों की तरफ। फत्तबाऊ अमरा फिरौन, तो उन्होंने फिरौन के हुक्म की जो है वो पैरवी की, उन्होंने फिरौन के हुक्म की पैरवी की। जो फिरौन के दरबारी थे उन्हें चाहिए था कि जब मौजे उन्होंने देखे, जब असा को उन्होंने देखा, चमकते हुए हाथ को उन्होंने देखा, तो उन्हें जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी दावत पर ईमान लाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिरौन का हुक्म जो था उसको माना। फमा अमरु फिरौना बिरशीद, हालांकि फिरौन का हुक्म कुछ अच्छा ना था। यहाँ पे रशीद का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और रशीद जो है ये रुश्द से है, और रुश्द के मानी होते हैं जैसे हदायत या फिर ठीक होना। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि फिरौन की जो राय थी वो साहिब राय नहीं थी, वो अच्छी राय नहीं थी। फिरौन जो रहनुमाई कर रहा था, लीड कर रहा था, दरबारियों ने जो फिरौन का कहना मान लिया, तो उसकी बातें तो ठीक ही नहीं थी, तो इसलिए उन्हें फिरौन का कहना नहीं मानना चाहिए था। तो वमा अमरु फिरौन बिरशीद, हालांकि फिरौन का हुक्म जो था वो सही ना था। फिरौन ने कोई सही रहनुमाई तो उनकी की नहीं थी, वो तो कुफर करने वाला था। तो जो दरबारी थे उन्हें फिरौन का कहना नहीं मानना चाहिए था। यकदुमु कौमहू, आगे आगे होगा वो अपनी कौम के। कदम जो है काफ दाल मीम, यहाँ पे इसका रूट है। कदम का मतलब होता है कि आगे बढ़ना, और दो पाओं के दरमियान जो फासला होता है, जो जमीन और मिट्टी होती है, उसको कदम कहते हैं। तो यकदमु आगे होगा वो कौमहू अपनी कौम के, कब, यौमल कियामती, कयामत के दिन। तो कयामत के दिन जो फिरौन है वो अपनी कौम को लीड करेगा, अपनी कौम से आगे आगे होगा। क्यों? इसलिए कि दुनिया में उसने लीड किया, कुफ्र करने में, शिर्क करने में, लोगों को जो है वो रहनुमाई करने में उसने लीड किया, इसलिए कयामत के दिन भी वो अपनी कौम को लीड करेगा। फअउरदहुमुन्नार, बस वो ला डालेगा उनको दोजख में। ये बड़ी खास बात है कि कयामत के दिन जब वो अपनी कौम के आगे आगे होगा और अपनी पेशवाई में, अपनी लीडरी में इन्हें दोजख की तरफ ले जाएगा। फअउरदहुमुन्नार, बस वो ला डालेगा इनको दोजख में। वबिसल विर्दुल मौरूद, और वो बहुत बुरा है घाट जहां वो उतारे जाएंगे। कैसी बदतर जाए वरूद है जिस पर कोई पहुंचे। अब आप देखें कि आयत नंबर 98 में यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिरौन जब कयामत के दिन अपनी कौम के आगे आगे होगा, तो आगे आगे उनको जब लेके जाएगा तो दोजख में जाकर उतार देगा, दोजख में जाकर फेंक देगा। और दोजख बहुत ही बुरी जगह है उतरने की, जिसमें ये लोग उतारे जाएंगे। अब आप देखेंगे जैसे कोई किसी को ले जाए और जाकर कहीं खड में जो है वो फेंक दे, खड के अंदर जो है वो गिरा दे। तो ये है मानी यहाँ पे। और ये फअउरदहुम, अलविर्द, अलमौरूद, ये तीन लफ्ज आपको नजर आ रहे हैं और तीनों का रूट एक ही है, वो रा दाल। इसके मानी है वो रा दाल जो है इसके मानी है कि वारिद करना, ला खड़ा करना, जा उतारना, जा उतारना। और फअउरदहुम, फिर जा उतारेगा उनको दोजख में। अन्नार यहाँ पे दोजख के लिए इस्तेमाल किया गया है। फअउरदहुम, फिर ला डालेगा उनको दोजख में। वह बेस अलविर्दु, और बहुत बुरी है अलविर्द। अलविर्द जो है इसके मानी है कि उतरने की जगह। तो वो जगह जहां पे वो उनको ले जाकर डाल देगा, वो बहुत बुरी जगह है। अब उसी रूट से अलमौरूद भी इस्तेमाल हुआ, और अलमौरूद जो है ये मस्दर है, उतरने की जगह, यहाँ पे इसम मफूल के तौर पर आया है। तो वो जो उन्हें जहां पे जो है वो उतारेगा, तो वो बहुत ही बुरी जगह है। इस सिलसिले में आप ये बात को याद रखें कि आमतौर पे जो है वो जानवर तालाब में जाते हैं ना पानी पीने के लिए, और एक जानवर होता है जो सब जानवरों से आगे आगे होता है। बाकी जानवर क्या करते हैं, उस जानवर को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो और तालाब पे जाते क्यों है, ताकि पानी पिया जाए। तो इसी तरह यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि फिरौन जो है अपनी कौम के लोगों को लेकर जो है वो जाएगा, तो आगे आगे फिरौन होगा, पीछे पीछे इसके पैरोकार होंगे। ऐसे जैसे कोई जानवर नहीं होते जो पीछे पीछे चलते जाते हैं, और वहां पे जहन्नुम की आग होगी। जैसे जहन्नुम की आग को मुफस्सरीन कहते हैं तालाब के पानी से तशबीह दी गई है, क्योंकि जो है ये जो घाट होता है, लोग वहां पे इसलिए जाते हैं ताकि जाकर अपनी प्यास जो है वो बुझाएं। क्योंकि विर्द जो है ना यहाँ पे, वो रा दाल, विर्द घाट को कहते हैं, तो फिरौन जो है जहन्नुम की आग पर, जो कि तालाब का पानी की तरह है, जैसे आग आग जो है वो पानी की तरह, और वहां पे फिरौन अपने साथियों को लेकर जब जाएगा तो जहन्नुम की आग बड़ा ही बुरा घाट होगा। जब वहां पे लोग पहुंचेंगे तो आमतौर पर पानी से प्यास बुझती है, कलेजा ठंडा होता है, लेकिन ये पानी तो आग है जिससे सीना जलेगा, अंतड़ियां और जिगर काट कर बाहर आ जाएगा। तो ये बहुत ही बुरी जगह है जहां पे जो है वो फिरौन अपने साथियों को जो है वो लेकर जाएगा, इनकी रहनुमाई जो है वो करेगा। तो याद रखें कि विर्द पानी के घाट को कहते हैं, जहां प्यासे जाकर अपनी प्यास बुझाते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नुम को विर्द कहा है, मौरूद वो घाट, वो जगह जहन्नुम जिसमें लोग ले जाए जाएंगे, और जिसको अल्लाह कहे, जिसे अल्लाह कहे कि बेस, कि वो बहुत बुरी है, अलविर्दु घाट अलमौरूद, वो जगह जहां पे वो लोग जाएंगे, तो उसके बुरे होने में कौन सा शक हो सकता है। तो सारी जिंदगी दुनिया में भी उनकी गलत रहनुमाई की, और आखिरत में भी जो है ये गलत रहनुमाई करेगा, और वो तो अंजाम का दिन होगा। वह उतबेउ फी हाजही लानत व यौमल कियामा। फिर फरमाया कि और इन लोगों पर दुनिया में भी लानत पड़ी और कयामत के रोज भी जो है वो लानत पड़ेगी। और लानत के मानी क्या होते हैं? रहमत से महरूम कर देना, अच्छे कामों से जो है वो किसी को महरूम कर देना। तो लानत का लफ्ज फिटकार, रहमत इलाही से दूरी, महरूमी, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में भी अल्लाह की रहमत से ये महरूम रहे और आखिरत में भी इससे महरूम रहेंगे। बेसरिफुलमरफूद, बेसा कितना बुरा है, जैसे नेमा भी आप पढ़ती है ना, नेमा, नून आइन मीम, नेमा कितना अच्छा है, इसी तरह बेसा कितना बुरा है, कितना बुरा है। अर्रिफ्दु, रिफ जो है रा फा दाल, ये कहते हैं इनाम को, अतिये को, बख्शिश को। तो कितना बुरा है वो इनाम अलमरफूद जो दिया गया इन्हें। तो अलमरफूद जो है इसका रूट भी रा फा दाल है, मरफूज जैसे दी जाने वाली बख्शिश, दिया जाने वाला तोहफा। तो ये जो इनको जहन्नुम की आग मिली है, अन्नार, घाट के तौर पर प्यास बुझाने के लिए, तो ये बहुत ही बुरा तोहफा है जो इनको मिला है। ज़ालिका मिन अम्बा इल कुरा, ये हैं हालात। मिन का मतलब है, अगर मिन ना होता तो फिर माने थे कि बस्तियों के हालात, बस्तियों की खबरें, लेकिन कहा कि मिन अम्बा इल कुरा, तो बस्तियों की खबरों में से कुछ, मिन ने कुछ के मानी पैदा कर दिए, थोड़े से। नबा वाहिद है, अम्बा इसकी जमा है, और नबा जो है ये बड़ी खबर को कहते हैं, अलकुरा करिया वाहिद है, कुरा इसकी जमा है, बस्तियों को कहते हैं। तो ये बस्तियों के हालात हैं जो कि तुम्हारे सामने जो है वो पेश किए गए। नकुस्सुहू, जो हम बयान करते हैं, अलैका, तुझ पर। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हैं मुख्तलिफ कौमों के हालात जो आपको सुनाए और आपके जरिए से दरअसल अहले मक्का को सुनाए। मिन्हा कायमुन, बाज इनमें से अब तक कायम है, वहसीद, और बाज जड़ से कट चुके हैं। तो कायम होना और जो है वो कट जाना, इसके क्या मानी है? जैसे बाज बस्तियां जो कि तबाहो बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जो है वो उनके आसार जो है वो मौजूद हैं, वो तबाहशुदा बस्तियां जो कि अब भी कायम है। जैसे मिस्र में आले फिरौन के हिलाक होने के बाद भी जो है वो मिस्र में उनके आसार जो थे वो बाकी थे, और बाद ऐसी भी बस्तियां थी जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिल्कुल जो है वो तबाहो बर्बाद करके जो है वो रख दिया। तो कुछ के तो आसार और निशान ही मिट गए, और कुछ के आसार और निशान जो है वो अभी भी बाकी हैं। तो ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो है वो समझाना, अल्लाह का बताना, और बताने का मकसद क्या है कि अहले मक्का जो है उन्हें इबरत दिलाई जाए, ताकि उनकी सरकशी जो है और उनके शिर्क जो है वो उस रवैये को और उस रविश को छोड़ दें। तो आपने जो है वो मुख्तलिफ अंबियाए कराम के जो है वो जो पीछे वाकयात पढ़े, तो अब यहाँ पे उन्हीं की तरफ जो है वो इशारा किया जा रहा है कि ये मुख्तलिफ बस्तियों के वाकयात हैं जो कि हमने तुम्हें सुनाए, बाज खत्म हो चुके हैं, बाज के आसार बाकी हैं। और यहाँ पे हसीद का लफ्ज जो है ये अहम है, हा स्वाद दाल, कटी हुई खेती को कहते हैं, जैसे जड़ से कोई कटा हुआ हो, खुश्क और पकी हुई फसल को काटना, और जैसे दरांती नहीं जिसे काटते हैं उसको महसद कहते हैं, मीम हा स्वाद दाल, तो उसी से ये लफ्ज जो है ये यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि बास जो है उनकी जड़ कट चुकी से मुराद कि वो तबाहो बर्बाद हो गए, बिल्कुल खत्म होकर रह गई। वमा ज़लमना हूं, और हमने इन पर जुल्म नहीं किया कि अगर इन पर अजाब भेजा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मैंने तो कोई इन पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम, लेकिन जो है इन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया। क्या जुल्म किया? अल्लाह का इनकार, अल्लाह के रसूलों का इनकार, अल्लाह की किताब का इनकार, अल्लाह की तालीमात का इनकार, तौहीद का, आखिरत का, सब चीजों का इन्होंने इनकार किया, ये था इनका जुल्म करना। फमा अगनत अनहुम आलिहतुहुम, फिर इनको गनी ना किया। अगनत जो है इसका रूट है गैनून, या गनी का मतलब होता है जैसे किसी को अमीर करना, रिच करना, काम आना। और यहां पे बताया जा रहा है कि आलिहतुहुम इलाह वाहिद है, और आलिहतु जो है वो उसकी जमा है, तो इनके माबूद इनके फिर कुछ भी काम ना आए। कब? जब अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरसा, तो उस वक्त जो है फिर इनके माबूद जिन्हें वो अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे, इनके कुछ काम ना आए। अल्लती यदउन मिन दूनिल्लाही मिन शेइन, अल्लती वो जिन्हें यदउना वो बुलाते थे, वो पुकारते थे, वो शिर्क करते थे, मिन दूनिल्लाही अल्लाह के सिवा। और दूनी जो है ये जवील अजदाद में से है, ऊपर नीचे आगे पीछे, सिवा के माने भी देता है। तो अल्लाह को छोड़कर जिन बुतों को पुकारते थे, मिनशेन कुछ भी, कुछ भी जरा भी इनके काम ना आ सके। लम्मा जब जा अमरु रब्बी का, जब तेरे रब का हुक्म इन पर आया, और यहाँ पे अमरु से मुराद अजाब का फैसला है कि जब अजाब आया तो इनके कुछ भी काम ना आए। वमा जादूहुम गैर ततबीब, और ना बढ़ाया इन्हें सवाए हिलाकत के। यहाँ पे ततबीब का लफ्ज जो है ये अहम है, और ततबीब जो है इसका रूट है ता बा बा, और सूरत तब्बत यदा जो है इससे भी आप ये लफ्ज जो है वो याद कर सकती हैं, और इसके मानी है ता बा बा के मसलसल खसारे में रहना। तब्बत यदा अबी लहबिं वतब, इसके माने क्या है कि तबाह हो जाना, मुसलसल खसारे में रहना, हिलाक हो जाना, टूट जाना। तो क्या हुआ? वमा जादूहुम, और नहीं बढ़ाया उनको, और जादूहुम का रूट है जे या दाल, तो नहीं बढ़ाया इनको गैरा तदबीब सवाए हिलाकत के, सवाए बर्बादी के। वकजाली का अख्जु रब्बी का, और इसी तरह पकड़ होती है तेरे परवरदिगार की, तो तेरे रब की जो पकड़ है बड़ी सख्त है, बड़ी दर्दनाक है। इदा अखजल कुरा, जब वो पकड़ता है बस्तियों को, करिया वाहिद है और कुरा इसकी जमा है, जब वो बस्तियों को पकड़ता है, वाहिया जालिमा, और वो जुल्म कर रही होती है और वो नाफरमान होती है, जालिम होती है, शिर्क करती हैं, तो अल्लाह जब उनको पकड़ता है तो बड़ी सख्त पकड़ता है, बड़ा सख्त पकड़ता है। इन अख्ज़हू अलीमुन शदीद, तहकीक इसकी गिरफ्त, इसकी पकड़ बड़ी दुख देने वाली है, अलीम बड़ी दर्दनाक है। इन्ना फी ज़ालिका लायतन, तहकीक इसमें अलबत्ता निशानी है, तहकीक इसमें अलबत्ता इबरत है, निशानी है, किसके लिए? इसको आप सर्कल कर लें, ये पीछे जो आपने कौमों के वाकयात पढ़े हैं, इनको जिक्र, इनका जिक्र करने के बाद, उनको सुनाने के बाद, अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत बात को समेट रहे हैं, उसका निचोड़ बता रहे हैं, और निचोड़ के तौर पर ये कह रहे हैं कि बस्तियों के वाकयात जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुनाए, और कहा कि इनसे कौन लोग इबरत हासिल कर सकते हैं, इन कौमों के वाकयात से, एक नहीं यके बाद दीगरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो 7 कौमों के वाकयात सुनाए। और वाकयात सुनाने का मकसद क्या था कि ये लोग थे कुफर करने वाले, ये लोग थे शिर्क करने वाले, ये लोग थे अल्लाह के रसूलों का मजाक उड़ाने वाले, उसकी आयात जो है उसको झुठलाने वाले। तो ना जो है वो बीवी के पैगंबर काम आया, ना बेटे के पैगंबर काम आया, और रिश्तेदारी जो है उनको कुछ भी फायदा ना दे सकी। तो क्या चीज फायदा देती है? लिमन खाफा अजाब अल आखिरा, के जो शख्स जो है वो अजाब आखरत का खौफ करे, जो अजाब आखरत से डरे। जालिका यौम मजमूअ, और ये जो कयामत का दिन है ये जमा होने का दिन है। यहाँ पे बड़ी अहम बात की तरफ जो है वो इशारा किया गया है कि कयामत का दिन जो है वो जमा होने का दिन है, जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है तमाम लोगों को जमा करेंगे। जालिका यौम मजमू, ये दिन होगा जमा होने का। लहुन नासु, लहू यानी उसमें, अन्नास लोग, तो उस दिन लोग जो हैं वो जमा होंगे, उस दिन इकट्ठे किए जाएंगे लहू उसमें सब लोग। वजालिका यौम मशहूद, और यही वो दिन होगा हाजरी का। अब आप देखें कि यहां पर उस दिन की दो सिफात जो है वो पेश की गई हैं। पहली तो ये है कि यौम मजमू, और दूसरी ये है कि यौम मशहूद। यौम मजमू के मानी क्या है? कि कयामत का दिन ऐसा दिन होगा कि उस दिन हर नेक और बद को, अपनी नेकी और बदी को देखने के लिए, उसका बदला देने के लिए अल्लाह ताला सबको जमा करेंगे, सब इकट्ठे करेंगे। वो लोग जो आगे गुजर गए, वो जो बाद में आने वाले हैं, अंबिया भी, उनकी उम्मतें भी, नेकी की दावत देने वाले, बुराई की राहें खोलने वाले, हाकिम भी, महकूम भी, बादशाह भी, लीडर भी, और उनको फॉलो करने वाले भी, तमाम लोग जो है उस दिन जमा किए जाएंगे। अब इतना ही काफी था कि सबको जमा किया जाएगा। साथ ही कहा वज़ालिका यौमुम मशहूद, और फिर जो कुछ भी उस रोज होगा सबकी आंखों के सामने होगा, यौमुम मशहूद। मुफस्सरीन कहते हैं कि यौमुम मशहूद जो है इसके मानी है कि उस दिन सबकी हाजिरी और पेशी का दिन होगा। मशहूद, मशहूद शीन हा दाल से है, और इसके मानी है कि उस दिन जो है सारे लोग जो हैं वो क्या कर रहे होंगे कि हाजिर होंगे। और सिर्फ यही नहीं कि लोग हाजिर होंगे, बल्कि उस दिन जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों को, लोग हाजिर होंगे, उनके अमाल हाजिर होंगे, फिर गवाहियां हाजिर होंगी, फिर नबी हाजिर होंगे, वो बताएंगे कि हमने क्या किया, और हर तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो सबको जो है वो जमा कर देंगे। तो क्यों? इसलिए कि वो यौम मशहूद है, जिस कयामत का दिन जिसमें सब जमा होंगे, तमाम अहले मैशर मुशाहिदा करेंगे, सब लोग वहां पर जो है वो मौजूद होंगे। और आप सोचें कि इस तसव्वुर से ही खौफ आता है कि जो है वो सब मौजूद होंगे, सबके सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो फैसला करेंगे। बड़ा ही सख्त दिन होगा। जैसे यहाँ की किसी कोर्ट में जब फैसला सुनाया जाता है, तो अगर उसको टीवी पे भी नशर किया जा रहा हो और लोग वहां पर मौजूद हों, सबके दरमियान वो फैसला सुनाया जाए, तो आप सोचें कि जो है वो कितना जो है वो इबरतनाक होता है। तो अब यही नहीं कि सिर्फ इंसान को बाज पुरस के लिए वहां पे हाजिर किया जाएगा, बल्कि मुकदमात पर शहादतें, गवाहियां कायम की जाएगी, कार्रवाई तमाम लोगों की मौजूदगी में की जाएगी, सब देख रहे होंगे, सब सुन रहे होंगे, सब कुछ सबके सामने जो है वो लाया जाएगा। और लोगों, वो बड़ा ही सख्त वक्त होगा, और कोई बच नहीं सकता, कोई छुप नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता, कोई बहाना जो है वो तराशा नहीं जा सकता। वमा नुअख्खिरुहु इल्ला लिअजलिन मअदूद, हम इसको लाने में कुछ बहुत ज्यादा ताखीर भी नहीं कर रहे। वमा नुअख्खिरुहु, और हम ताखीर नहीं कर रहे, इल्ला मगर, लिअजलिन एक वक्त तक, मअदूद जो के गिना चुना है। मअदूद जो है ऐन दाल दाल से है, और इसके मानी है के अदद मादूद से है, जैसे कोई चीज जो कि गिनी हुई है। फरमाया कि मगर जो वो जो वक्त है, वो जो कयामत के लाने का वक्त है, उसमें कुछ ज्यादा देर नहीं है, क्योंकि अहले मक्का बार बार कहते थे कि कब आएगी ना, तो इसलिए यहां पर जो है वो बताया कि वो आना आने ही वाला है। यौम याती ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज्निही, जब वो आएगा तो किसी को बात करने की मिजाल ना होगी मगर अल्लाह की इजाजत से। यौम याती, जिस दिन वो आएगा, जब कयामत का दिन आएगा, ला तकल्लमु, कोई बोल नहीं सकता, कोई कलाम नहीं कर सकता, नफ्सुन कोई नफ्स, इल्ला बिइज्निही मगर उसकी इजाजत से, मगर अल्लाह की इजाजत से। तो कयामत के दिन जो है अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई बोल नहीं सकता, हत्ता कि पैगंबर भी नहीं बोल सकते, कोई फरिश्ता जो है मुअज्जज से मुअज्जज फरिश्ता भी बात नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये जो शिफात का गलत अकीदा है, बाज लोग जो है वो बैठे रहते हैं सोच करके फलां हमारी सिफारिश करवा देगा और फलां जो है वो हमें अल्लाह से जो है वो बचा लेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अल्लाह के दरबार में कोई मुअज्जज से मुअज्जज फरिश्ता, कोई पैगंबर, कोई भी अहकमुल हाकिमीन की इजाजत के बगैर बोल नहीं सकता। फमिनहुम शकीयुन व सईद, फिर कुछ लोग उस रोज बदबख्त होंगे और कुछ नेक बख्त होंगे। शकी उन शकावत से है, बदबख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सईद जो है सआदतमंदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो नेक लोग होते हैं ना, तो ये आपस में एक दूसरे के ओपोजिट भी हैं, शकी उन बदबख्त और सईद उन नेक बख्त, खुशकिस्मत, ये दोनों एक दूसरे के ओपोजिट हैं। तो कुछ दो तरह के रवैये थे दुनिया में, वहां पे दो तरह के जो है वो रिजल्ट जो है वो निकलेंगे। फअम्मल्लज़ीना शकू फ़िन्नारी, बस वो लोग जो बदबख्त होंगे, जिन्होंने कुफर किया, शिर्क किया, अल्लाह की नाफरमानी की, तो वो लोग जो है वो आग में होंगे। अन्नार, ये दोजख का नाम है, वो दोजख में होंगे। लहुम फीहा ज़फ़ीरुन व शहीक, यहाँ पे दोजख जो है इसकी मंजरकशी की जा रही है। दोजख बड़ा ही जो है वो सख्त मकाम है, जफीर जफीर और शहीक, ये दोजख की सिफात है। और जफीर जो है वो फसरीन कहते हैं कि जे फे और रा, इसका रूट है, इसके मानी है लंबा सांस बाहर निकालना, गधे के रींगने की इब्तदाई आवाज जो आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊंची होती जाती है। तो ये है जफीर, जैसे चीखना, पुकारना, चिल्लाना। और शहीक, शीन हा काफ, गधा जब रींगने की आवाज को खत्म करने लगे तो इसकी आखिरी आवाज जो ऊंची आवाज से फिर नीची होने लगती है, फिर ऊंची आवाज जब ऊंची होने के बाद फिर वो आहिस्ता होती है ना, तो उसको शहीक कहते हैं। कि लंबी सांस खींचना, धाड़ना, और उसके लिए लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है ये दोनों अल्फाज, ये दोनों एक दूसरे के ओपोजिट भी हैं, कि जफीरुन गधे के रींगने की इब्तदाई आवाज है, और शहीकुन उसके रींगने को जब वो खत्म करने लगता है तो उसकी आखिरी आवाज, जैसे ऊंची आवाज से ऊंची आवाज होकर फिर नीचे होने लगे। आप इसको यूं भी याद कर सकती हैं, ये तो याद रखें कि जैसे चीखना, धाड़ना, रींगना, जैसे जोर जोर से फिर रींगा धाड़ा जाता है और चीखा जाता है, चिल्लाया जाता है, तो कैसे याद करेंगे? आपके जफीरुन शुरू वाला है और शहीकुन आखिर वाला है, तो जैसे हरूफ तहजी में जे पहले आता है और शीन बाद में आता है, तो ये निशानी आप याद रख लें। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो जहन्नुम जो है इसका तारुफ करवा रहे हैं कि दोजख में जब लोग जाएंगे तो वहां की गर्मी और प्यास की शिद्दत से वो हांपेंगे, चीखेंगे, रींगेंगे और फुंकारे मारेंगे। जफीरुन जैसे गदा नहीं आवाज निकालता, और फिर इसी तरह शहीकुन اونچی آواز، آہستہ آواز، خالدین فیہا، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں. اور دامت کا جو لفظ ہے دال واو میم سے ہے، اور اسی سے دوام ہے. جیسے اور دوام کے معنی کیا ہے کہ جیسے کوئی چیز جو ہے وہ مستقل ہوتی ہے، تو دوم کا مطلب جو ہے وہ ہمیشہ ہونا ہے. اور یہاں پہ فرمایا کہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، فیہا اس میں، ماں جب تک دامت قائم رہیں گے آسمان بھی اور زمین بھی. الا ما شاء ربک، جب تک تمہارا پروردگار چاہے. ان ربک فعال لما یرید، بے شک پروردگار تمہارا فعال کر دینے والا ہے، لما یرید، جو کچھ وہ ارادہ کرتا ہے. تو اللہ رب العزت جو کچھ چاہے تو وہ کر لیتا ہے، اس میں وہ کوئی کمی بیشی جو ہے وہ نہیں کرتا. تو اب یہاں پہ دوزخی جو ہے وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ موجود ہیں. اور جب تک تمہارا رب چاہے، یہ جو دائمی عذاب ہے جو جہنم میں اللہ کے نافرمانوں کو مل رہا ہے، انہیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، انہیں کوئی کم نہیں کر سکتا، یہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا، جب تک کہ تمہارا رب ہی کسی کے عذاب میں کمی کا فیصلہ کر لے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. لوگوں کو بڑا ہی سخت دن ہے، تو آئیے اپنے اعمال کو سنوارے، آئیے سعیدون میں شامل ہونے کے لیے ایمان لائیں اور عمل صالح کریں. آئیے جو ہے اللہ سے ڈرے، کیونکہ وہاں پہ کن لوگوں کو فائدہ ہوگا جن کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہوگا. پھر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّتِ، رہے وہ لوگ جو کہ سُعِدُوا، جو کہ نیک بخت نکلیں گے، جو کہ نیک بخت جو ہے وہ بنیں گے. فَفِي الْجَنَّتِ، وہ جنت میں ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. کتنی خوبصورت بات ہے، کیونکہ دنیا میں جو ہے وہ جوانی جن کے پاس ہے وہ سوچتے ہیں کہ ڈرتے ہیں کہ کب بڑھاپا آ جائے گا، تو جو ہے وہ جوانی کے جانے کا ڈر لگا رہتا ہے، بہار کے خزاں میں مبتلا ہونے کا ایک دھڑکا لگا رہتا ہے. جاب ملی ہوئی ہے تو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں چھوٹ نہ جائے. اور جو چیز بھی موجود ہوتی ہے یہ فکر ہوتی ہے کہ یہیں کہیں چھین تو نہیں جائے گی. تو یہاں پہ یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں. الا ما شاء ربک، الا یہ کہ تیرا رب ہی کچھ اور چاہے. عطا ان غیر مجزوز، ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، کبھی منقطع نہیں ہوگا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو ہے یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، اور یہ دنیا کے آسمان اور زمین مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ موجودہ جو آسمان و زمین ہے یہ ختم کر کے نئے آسمان و زمین جو ہے وہ بنائے جائیں گے. کیونکہ اللہ رب العزت خود قرآن میں کہتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، تو اس وقت جو ہے یہ آسمان و زمین ختم کر دیے جائیں گے اور نئے آسمان و زمین جو ہیں وہ ہوں گے. تو جب تک وہ موجود رہیں گے، جب تک اللہ چاہے گا، تو اس وقت جو ہے اس وقت تک وہ جنت میں رہیں گے. عطا ان، یہ بدلہ ہے، یہ بخشش ہے. غیرہ مجزوز، مجزوز جو ہے اس کا روٹ ہے جیم زال زال، اس کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، توڑنا. اصل میں کسی سخت چیز کو کاٹ کر یا توڑ کر ریزہ ریزہ کر دینا، اس کو جو ہے وہ الجز کہتے ہیں، کٹی ہوئی شے کا چھوٹا سا ٹکڑا، جزاز کٹا ہوا ٹکڑا، سونے کے ڈلے کو بھی کہتے ہیں. تو جز جزن کے معنی ہے توڑ دینا، ٹکڑے کر دینا. تو جب کہہ دیا کہ غیرہ مجزوز، غیرہ नहीं, मजदूर टुकड़े किए हुआ। तो जो चीज टुकड़े नहीं की हुई, जो काटी भी नहीं है, तोड़ी भी नहीं है, तो इसके माने क्या है कि कभी ना खत्म होने वाली। तो ये जो अल्लाह ने जन्नत दी है और जो इसकी नेमतों से नवाजा है, तो ये जन्नत जो है, इसकी नेमतें जो तोहफे के तौर पर, अतिये के तौर पर मिली हैं, कभी खत्म होने वाली नहीं है। बड़ी खूबसूरत ये बात है। फला तकू फी मिरियतिन, बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो हैं वो शक में ना रहें। मिम्मा याबुदू हा उलाई, उस चीज से कि पूछते हैं ये लोग। अब बजाहिर खिताब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन रुख जो है मुखालिफीन की तरफ है। आपको मुखातिब करके कहा जा रहा है कि ये लोग जो शिर्क कर रहे हैं, ये शिर्क पर जमे हुए हैं। तो इस सिलसिले में कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि इनके पास कोई दलील मौजूद है, क्योंकि ये इनके पास क्या दलील थी? वो कहते थे हमारे बाप दादा ऐसे करते आए, और कोई अकल नहीं, कोई दलील नहीं, बस ऐसे ही। तो कहा कि ये जो शिर्क कर रहे हैं, इस सिलसिले में आप किसी शक में ना हो। मा याबुदूना, नहीं ये इबादत करते, नहीं ये शिर्क करते। इल्ला कमा याबुदू आबाउहुम मिन कब्लू, तो ये तो बस लकीर के फकीर हैं। ये उसी तरह पूजा पाठ किए जा रहे हैं, ये उसी तरह शिर्क किए जा रहे हैं जिस तरह पहले इनके बाप दादा शिर्क करते थे। वा इन्ना लमुवफ्फूहुम नसीबहुम, और हम इन्हें भरपूर इनका हिस्सा जो है वो देंगे, गैर मनकूस, बगैर इसमें कि इसमें कुछ कमी हो। वा इन्ना, और बेशक हम, लमुवफ्फूहुम, अलबत्ता हम वफा करने वाले हैं, पूरा पूरा देने वाले हैं। नसीबहुम, हिस्सा इनका, गैर मनकूस, मनकूस जो है नून काफ स्वाद से है, नक्स करना, कमी करना। तो इनके शिर्क का बदला जो है बगैर किसी कमी के जो है वो इनको दिया जाएगा, जर्रा बराबर जो है, फिर उसमें कोई कमी जो है वो नहीं की जाएगी। बिला कमो कास्त, वलकद एतैना मूसल किताबा फख्तलिफा फी, फरमाया हम इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को भी किताब दे चुके हैं। फख्तलिफा फीही, सो इसमें इख्तलाफ किया गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी, तौरात दी थी, तो उनकी कौम ने क्या किया, उसमें इख्तलाफ किया। फिरौन ने और उसके साथियों ने झुठलाया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी कौम को कुरान पेश किया, तो लोगों ने इनकार किया, लोगों ने झुठलाया। यहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, और जो आपके मुखालिफीन थे उनको जो है वो डराया जा रहा है, उनको तंबीह की जा रही है। फरमाया लौला कलिमतुन सबकत मिन रब्बिका लकुदिया बैनहुम, अगर तेरे रब की तरफ से एक बात पहले ही तय न कर दी गई होती, तो इन इख्तलाफ करने वालों के दरमियान कभी का फैसला चुका दिया होता। तो अल्लाह ने पहले ही फैसला कर दिया था कि कयामत कब आएगी या कितनी इन लोगों को जिंदगी और मोहलत मिलेगी, और अगर अल्लाह ने पहले फैसला ना किया होता तो फिर अल्लाह जो है वो अजाब भेज देता। क्योंकि अहले मक्का पूछते थे कि अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अगर हम झूठे हैं, अगर हम शिर्क करते हैं, तो फिर अल्लाह का अजाब हम पर क्यों नहीं आता, फिर कयामत क्यों नहीं आती? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये दुनिया के लोग, ये लोग क्या चाहते हैं कि ये फैसला चाहने में जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने जो है वो फैसले का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, और अल्लाह जो है वो जल्दबाजी नहीं करेगा। व इन्नहुम लफी शक्किन मिन्हु मुरीब, और ये लोग जो है इसकी तरफ से शक में पड़े हुए हैं, क्योंकि कयामत आ नहीं रही, तो इनको लग रहा है कि देर हो रही है, तो हम सच्चे हैं, तो ये लोग जो है वो इस सिलसिले में जो है वो शक में पड़े हुए हैं। यहाँ पे जो है वो मुरीद जो है, ये भी रैब का लफ्ज आप पढ़ चुकी है ना, ये उसी से है, शक के मानी में है। व इन्ना कुल्लम्मा लयुवफ्फियन्नहुम रब्बुका आमालहुम, फिर फरमाया और बेशक जितने लोग हैं के, वह इन्ना, और बेशक कुल सब का, लम्मा जब जब वक्त आएगा तो सब का, ला युवफी अन्ना हूं, पूरा पूरा बदला देगा। लाम लामे ताकीद है, युवफी अन्ना हूं, जरूर बजरूर देगा इनको, रब्बू का तेरा रब, आमाल हम इनके अमाल का। तो जब वो वक्त आएगा तो तेरा रब इनके अमाल का पूरा पूरा बदला देगा। इन्नहू बिमा यअमलूना खबीर, यकीनन वो इनकी सब हरकतों से जो है वो वाकिफ है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इनकी एक एक हरकत उनसे वाकिफ है, छोटी भी बड़ी भी, और वो जो ये छुप के करते हैं, जो सबके सामने करते हैं, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको ये अल्लाह से जो है वो छुपा सके। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी हर हरकत जो है उसका बदला देगा। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि अगर सजा नहीं अभी फौरन दी जा रही तो आप परेशान ना हो, अल्लाह इनकी पूरी खबर रखता है और खूब खबर लेगा। ये अपना काम करते रहें, आप अपना काम करते रहें, और फिर इनकी जो इनका जो फैसला है वो मुझ पर छोड़ दे। ये जो आयात हैं, दो आयतें, आयत नंबर 112 और 113, ये जो आयतें हैं ये बड़ी ही जो है वो सख्त आयात है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन आयात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर पर जो है वो नसीहत की है। फरमाया फस्तकिम कमा उमिरता वमन ताबा माका वला ततगौ इन्नहु बिमा तअमलूना बसीर। मुफस्सरीन कहते हैं कि इन आयात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तकामत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। फरमाया फस्तकिम, फस्तकिम फस आप जो हैं वो कायम रहिए, आप सीधे रहें। अब आप देखें कि इस्तकामत का लफ्ज कौम से है, रूट इसका काफ व मीम है, इसके मानी है सीधा खड़ा होना, जिसमें जरा सा भी झुकाव ना हो। और ये काम आसान नहीं है, जैसे किसी लोहे को पत्थर को जो है सीधा खड़ा कर दिया जाए, अदना सा जरा सा भी इधर उधर जो है वो झुकाव ना हो। अब देखें अगर लोहा है, पत्थर है, दीवार है या ईंटें हैं, उनको सीधा करना, सीधा खड़ा करना आसान होता है ना, क्योंकि वो हिलते नहीं है। लेकिन मुतहर्रिक चीज का हर वक्त हर हाल में एक हालत पर कायम रहना ये बड़ा मुश्किल है। तो इस्तकामत जो है ये छोटा सा लफ्ज है, लेकिन अपने अंदर अजीम शान वसत रखता है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है फस्तकिम, और आपको कहकर जो है वो आपके तमाम साथी भी इसमें मुखातिब है, तमाम मुसलमान, आपके आप पर ईमान लाने वाले सहाबा भी और दूसरे सारे भी, आगे भी बताया जा रहा है फस्तकिम आप इस्तकामत दिखाइए, कमा उमिरता जैसा कि आपको हुक्म दिया गया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि पूरे कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस आयत से ज्यादा सख्त और शाख कोई आयत नहीं आई। और फरमाया कि जब सहाबा कराम ने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिहया मुबारक दाढ़ी मुबारक में कुछ सफेद बाल देखकर बतौर हसरत और अफसोस के अर्ज किया कि अब तेजी से बुढ़ापा आपकी तरफ आ रहा है, तो फरमाया मुझे सूरत हूद ने बूढ़ा कर दिया। सूरत हूद में जो पिछली कौमों पर सख्त शदीद अजाब के वाकयात हैं तो वो इसका सबब हो सकते हैं, मगर अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत है आपके बुढ़ापे का सबब, क्योंकि आपको फरमाया गया कि ए मोहम्मद आप इस्तकामत दिखाइए। इस्तकामत दिखाने का मतलब क्या है कि बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएं, बिल्कुल कायम हो हर वक्त हर चीज में, हालात कैसे क्यों ना हो। और किसमें आपने जो है इस्तकामत दिखानी है, अपने अकायद में, इबादात में, मामलात में, इखलाक मुआशरत, हर तरह के हालात में अल्लाह ने जो हुदूद बता दी है अतात की, फरमाबरदारी की, इसमें किसी अमल में किसी हाल में किसी एक तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए, ज्यादती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वैसा जैसा कि हुक्म दिया गया है। वमन ताबा मा का, वमन ताबा इसके मानी है और जिन्होंने तौबा की, मा का तेरे साथ, यहां पे मुफस्सरीन कहते हैं कि उम्मत की तरफ इशारा है, और तुम्हारे वो साथी जो कुफ्र बगावत से ईमान की तरफ पलट आ गए, पलट गए हैं। तो वमन ताबा माह का, और जिन्होंने तेरे साथ तौबा की, तमाम मुसलमान जो है वो इसमें शामिल है। अब आप देख लीजिए कि जितनी भी इस वक्त जो है वो गुमराहियां हैं, अमली खराबियां हैं, वो इस्तकामत से हट जाने का नतीजा है। क्योंकि जब अकायद में इस्तकामत नहीं होती तो बिदतें शुरू हो जाती हैं, कुफ्र शिर्क तक नौबत आती है। इसी तरह रहबानियत लोग इख्तियार कर लेते हैं, अफरात तफरीत कमी बेशी जो है उसका जो है वो शिकार हो जाते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम की अजमत और मोहब्बत की जो हुदूद मुकर्रर कर दी गई, अगर लोग इसमें कमी करते हैं तो गुमराह और गुस्ताख बन जाते हैं, ज्यादती करते हैं तो पैगम्बरों को खुदा बना देते हैं। इसी तरह यहूदो नसारा जो है वो गुमराही में मुबतला हो गए। फिर इसी तरह इबादत के जो तरीके हैं, तकर्रुब इलाही के जो तरीके हैं, उसमें जरा सी भी कोताही नहीं करनी, ना जरा सा उसको बढ़ाना है ना कमी करनी है। तो बढ़ाएंगे तो भी गलत और कम कर देंगे तो भी गलत, और अपनी मर्जी से उसमें कुछ रियायतें निकाल लेंगे तो भी गलत। आप फिर इसी तरह मामलात में देख लें, इखलाक में, मुआशरत में, कि इतदाल जो है उसको इख्तियार करना है। अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि इतना कर सकते हैं और ये मौका था और ये गमी का मौका था, ये शादी का मौका था, ये खुशी का मौका था, और फिर फलां के अंदर कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, फलां नहीं मान रहा था। नहीं, दोस्ती दुश्मनी, खुशी गमी और गुस्सा है, आम दिन है, कुछ भी हालात है, तो सिराते मुस्तकीम पर जो है वो चलना है और इस्तकामत के साथ चलना है। तो इस्तकामत एक ऐसा जामे लफ्ज है कि दीन के तमाम अज्जा अरकान इसमें आ जाते हैं। हजरत सुफयान बिन अब्दुल्ला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे इस्लाम के मामले में कोई ऐसी जामे बात बताइए कि आपके बाद मुझे किसी से पूछने की जरूरत ना रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल आमनतु बिल्लाही सुम्मा इस्तकिम, कह कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर उस पर जो है वो मुस्तकीम रहे, साबित कदम रहे। इसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है। हजरत उस्मान जो है बिन हादिर कहते हैं कि मैं एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह नो के पास हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मुझे वसीयत कीजिए। आपने फरमाया, अलैका बितक्वल्लाह वल इस्तकामती इत्तबे वला तब तदिय, तुम तकवा और खौफे खुदा को लाजिम पकड़ो और इस्तकामत भी, जिसका तरीका यह है कि दीन के मामले में शरीयत का इत्तबा करो, अपनी तरफ से कोई बिदत इजाद ना करो। तो प्यारी बहनों, दुनिया में सबसे ज्यादा दुश्वार काम इस्तकामत है, क्योंकि जो है वो बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि सबको छोड़कर सबसे कटकर जो है वो कहते हैं कि जो है वो कुछ चीजों को छोड़ना चाहते हैं, जैसे लोगों से मिलना छोड़ देते हैं कि भी जबान की हिफाजत नहीं होती, या मामलात अच्छे नहीं रहते, या बाज लोग कह देते हैं अच्छा जी हम तो निकाह ही नहीं करते, बाज लोग कहते हैं जी हम तो मिलते जुलते नहीं किसी से, और बाज लोग जो है यानी इस तरह अफरात यानी चीजों को काटते चले जाते हैं, और बाज लोग क्या करते हैं कि आगे बढ़ता बढ़ते चले जाते हैं, इबादात में गुलू करते जाते हैं। तो यहाँ पर जो है जो खास बात बताई जा रही है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और आपके तमाम जो उम्मती हैं उनसे भी कहा जा रहा है कि आप लोग जो हैं वो क्या करें, इस्तकामत दिखाएं। फिर उसके बाद जो है वो दूसरी बात फरमाई, वला ततगौ, और ये जो चीज है ना, और ना तजावुज करो। तत्गौ, तत्गौ जो है इसके क्या मानी है? तत्गौ जो है ये इसके मानी है कि ज्यादती करना, सरकशी करना। तत्गौ जो है ये इस्तकामत का ओपोजिट है, तत्गौ ये इस्तकामत का ओपोजिट है कि हद से तजावुज करना, हद से बाहर निकलना। तो जो है वो सरकशी नहीं दिखानी, हद से नहीं बढ़ना। जैसे समंदर जो है जब उसमें जो है वो तुगयानी आती है तो क्या करता है, इर्द गिर्द की बस्तियों को बहा ले जाता है, तबाही बर्बादी हर तरफ तबाही मचाता हुआ। इसी तरह फिरौन में जब तुगयानी आई तो खुदा बन बैठा, नमरूद में, नमरूद जब हद से बड़ा तो उसने भी जो है वो खुदाई का दावा कर दिया। तो यहाँ पे अहले ईमान जो है उन्हें बताया जा रहा है कि जो है वो हद से नहीं बढ़ना, कुफर नहीं करना, शिर्क नहीं करना। इन्नहु बिमा तामलूना बसीर, जो कुछ तुम कर रहे हो, इन्नहु बेशक वो इससे जो तामलूना तुम करते हो बसीर देख रहा है। अब आप सोचें कि एक तरफ कहा कि इस्तकामत दिखाइए जैसा कि हुक्म दिया गया है अपनी मर्जी से नहीं, दूसरी तरफ कहा कि आपके साथ जो ईमान लाने वाले हैं, जो तौबा करने वाले हैं, तीसरी तरफ कहा कि बगावत नहीं दिखानी, हलाल से मरूब नहीं होना, अपने नफ्स की जो ख्वाहिशात है उनसे मुतासिर नहीं होना, जमाने के जो रस्म और रवाज हैं, जो पीयर प्रेशर है उसकी वजह से जो है वो इस्तकामत जो है उसमें ढीले नहीं पड़ना। लेकिन याद रखना जो कुछ तुम कर रहे हो या करोगे अल्लाह सब कुछ देख रहा है कि तुम जो है कहाँ जो है वो ढीले पड़ते हो, कहाँ अपने नफ्स की पूजा करते हो, कहाँ तुम जो है वो बगावत इख्तियार करते हो, जो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह सब कुछ देख रहा है। फिर फरमाया वला तरकनू, यहाँ पे तरकनू का जो लफ्ज है ये अहम है, इसका रूट है रा काफ नून, इसके मानी है किसी चीज की वो जानिब जिसके सहारे पर वो कायम होती है। जैसे पिलर को रुकुन कहते हैं, पिलर जो है उसको रुकुन कहते हैं, और इसके मानी होते हैं जैसे क्योंकि पिलर पर सुतून पर इमारत पूरी खड़ी होती है ना, तो इस तरह ये रुकुन लफ्ज जो है ये जोर कुवत ताकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कहा कि ताकत बनना है वला तरकनू और झुकना नहीं है, माइल नहीं होना, इल्लज़ीना उन लोगों की तरफ, जलमू जो जुल्म करते हैं, जो शिर करते हैं, जो इस्तकामत नहीं दिखाते, उस कमी बेशी करते हैं, उनकी तरफ नहीं झुकना। फतमस्सकुमुन्नार, बस तुमको छुएगी आग, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया असुम ला तुम सरून, वरना तुम जहन्नुम की लपेट में आ जाओगे और तुम्हें कोई ऐसा वली ना मिलेगा जो तुम्हें अल्लाह से बचा सके, तुम्हें कहीं से मदद नहीं मिलेगी जो तुम्हें अल्लाह की पकड़ से जो है वो बचा सके। यहाँ पे ये जो वला तरकनू इसके क्या मानी है, ये जो झुकना है इसके क्या मानी है? मुफस्सरीन कहते हैं कि ये जो झुकाव और मिलान है सहाबा और ताबईन से, इसके मानी ये पता चलते हैं, आप भी इसको नोट कर लें, ये झुकना क्या है? हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुराद है कि जालिमों से दोस्ती करना। तो कहा कि इनका कहना ना मानो। इब्ने जुरैज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जालिमों की तरफ किसी तरह का भी मैलान ना रखो। जालिम कौन है? कुफ्र करने वाले, शिर्क करने वाले, यानी खुद करना तो दूर की बात, ऐसे लोगों से दोस्ती भी नहीं करनी। अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इनके अमाल और अफाल को पसंद ना करो। सुदई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जालिमों से मुदाहनत ना करो, और जो लोग कुफर और शिर्क करने वाले हैं, बुरे काम करने वाले हैं, उनके बुरे बुरे अमलों पर रजामंदी का इजहार ना करो। अच्छा, रजामंदी जाहिर नहीं करते लेकिन खामोश भी नहीं रहना। और हजरत इकरमा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जालिमों की सोबत में ना बैठो। काजी बेदावी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि शक्ल व सूरत, फैशन, रहन सहन में इनके तरीकों पर चलना, ये भी जो है इससे मना किया जा रहा है। तो आप देख लीजिए कि कुफ्र करने वाले, शिर्क करने वाले, गुनाह करने वाले, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत ना करने वाले, तो इनकी तरफ जरा सा भी मिलान और झुकाव नहीं होना चाहिए, इनकी सोबत नहीं होनी चाहिए, इनसे दोस्ती नहीं होनी चाहिए, पसंदीदगी का इजहार नहीं होना चाहिए। अब आप देख लें कि जब उनसे मिलान करने से मना किया जा रहा है जरा सा भी, और अगर ऐसा खुद ही करने वाले बन जाए तो फिर कहां जाएंगे? और यहां पर मुफस्सरीन कहते हैं कि अहले कुफ्र, गुनागार, अहले बिद्दत, उनकी सोबत से मुकम्मल परहेज करना जो है उसका हुक्म दिया जा रहा है। और अगर कभी मजबूरी से मिलना भी पड़े तो फिर जो है वो बुराई के एहसास के साथ, حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان دو آیتوں کے دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو دو حرف لا کے اندر جمع کر دیا. دو حرف لا کیا ہے؟ پہلے یہ کہا لا تطغو، پھر کہا لا ترکنو. تو پہلے لفظ میں لا تطغو کے معنی ہے حدود شریعت سے نہیں نکلنا، اور لا ترکنو اس کے معنی ہے برے لوگوں کی صحبت کی ممانعت، اور یہی پورے دین کا خلاصہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے تمام ایمان لانے والوں کو نصیحت کی جاری ہے. فرمایا کہ یہ استقامت کیسے حاصل کی جائے. مثلا آپ بھی سوچتی ہوں گی کہ مجھے استقامت اختیار کرنی ہے اور اس کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ استقامت جو ہے نا یہ آسان بات نہیں ہے. اس پہ تقریر کرنا اور اس پہ درس دینا اور اس پہ ورکشاپ کرنا، اس پہ کتابیں لکھنا، اس پر باتیں کرنا، یہ بہت آسان ہے. اس کا سبق یاد کرنا، سننا سنانا، پیپروں میں لکھنا لکھانا، نمبر دینا، یہ سب بہت آسان ہے، یہ کچھ مشکل نہیں ہے. لیکن اس پر چلنا یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے. تو اگلی آیات میں اس کا جو ہے وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس کا انداز بتایا جا رہا ہے کہ یہ استقامت کیسے مل سکتی ہے، اس کی تدابیر بتائی جا رہی ہیں. اور سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کا ذکر کیا کہ استقامت اختیار کرنے کا ذریعہ نماز ہے، کیونکہ شیطان سے اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے جو مصیبتیں پیش آتی ہیں، جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو وہ چالیں چلتا ہے، تو شیطان اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو روحانی طاقت چاہیے، جو استقامت چاہیے، وہ چیز جو بندے کو اللہ سے جوڑ دے وہ نماز ہے. فرمایا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، اور قائم کرو نماز کو دونوں طرف دن کے، وزلفا اور کچھ حصہ من الليل رات سے. اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر. اب آپ دیکھیے وأقم الصلاة، اور نماز قائم کر آرڈر کا صیغہ ہے. کب؟ طرف النہار، اصل میں یہ طرفین تھا. طرف ایک کنارے کو کہتے ہیں، ایک سرے کو کہتے ہیں، تو طرفین دو سرے، اور یہاں پہ آپ کو طرفین کا نون گرا ہوا نظر آ رہا ہے، تو طرف یا کی زیر بتا رہی ہے کہ اس کے بعد ایک نون تھا جو کہ گر چکا ہے. گرامر والے اس بات کو سمجھیں گے. بہرحال آپ کو نہیں بھی سمجھ آتی تو آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہ طرف یہ جو ہے نا اسے مراد دو کنارے ہیں. تو النہاری دن کے دو کناروں پر نماز قائم کرو، دن کے دو سروں پر. اب آپ دیکھیں کہ ایک دن کے جو ہے وہ دو سرے کیا ہوتے ہیں. ایک تو وہ وقت ہوتا ہے جبکہ صبح ہو رہی ہوتی ہے، وہ دن کا ایک کنارہ ہوتا ہے. اور کیونکہ دن کا آغاز ہوتا ہے نا، تو اس سے مراد فجر کی نماز ہے. اور دوسرا جب دن ڈوب رہا ہوتا ہے، دن جو ہے ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی دن کا ایک کنارہ ہے، کیونکہ پھر اندھیرا پھیلنے والا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مغرب کا وقت ہے. تو مفسرین نے دن کے دو سروں سے مراد فجر کی، صبح کی، اور پھر مغرب کی نماز جو ہے وہ مراد لی ہے. وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور کچھ رات گزرنے پر. اب جب مغرب کے بعد کچھ رات گزرے گی تو کون سی نماز پڑھی جائے گی؟ فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ عشاء کی نماز ہے. کہ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور کچھ رات گزرنے پر. اور زلف جو ہے جیسے اس کے معنی ہے قرب کے، تو رات کے حصوں کو بھی زلف کہا جاتا ہے. تو مراد ہے، اس سے مراد ہے عشاء کی نماز. کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ معراج سے پہلے نازل ہوئی، اور اس وقت جو تھی یہی نماز فرض تھی، فجر کی، مغرب کی، اور پھر جو ہے وہ عشاء کی. ابھی پانچ وقت کی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی جب معراج کا واقعہ پیش آیا، پھر جس میں پانچ وقت کی نمازیں جو تھی وہ فرض کر دی گئی. تو یہاں پہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، और नमाज जो है ये अल्लाह से ताल्लुक को जोड़ती है, दिल से वसवसे कमजोरियों को खत्म करती है, इंसान के अंदर एक नया वलवला, एक अज़्म, एक हौसला पैदा होता है कि वो अपने हालात का जो है वो मुकाबला करता है। तो हालात अच्छे हैं या बुरे हैं, जवानी है या बुढ़ापा है, मुश्किलात हैं या आसानियां हैं, किसी भी तरह के हालात हैं, लेकिन दीन पर जो है वो इस्तकामत दिखानी है, और उस इस्तकामत का पहला जरिया जो है वो नमाज करार दिया गया। फिर साथ ही फरमाया, इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यात, यकीनन दरहकीकत नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। इन्नल हसनाती, हसनतुन वाहिद है, हसनात इसकी जमा है, तो नेकियां जो हैं क्या करती हैं, युज़हिबना, ज़हबा जो है वो रूट है, ज़ाल हाबा, और इसके मानी होते हैं ज़हबा के जाना, तो युज़हिबना चली जाती हैं, दूर कर देती हैं। तो नेकियां जब आती हैं तो युज़हिबना दूर कर देती हैं, असय्यात गुनाहों को, सय्यातुन वाहिद है, सय्यात इसकी जमा है, इसका रूट है सू, बुराई को कहते हैं। तो इंसान जब नेकियां करता है तो उससे जो है वो गुनाह झड़ जाते हैं। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये एक नसीहत है, नसीहत कबूल करने वालों के लिए। अब इस सिलसिले में मैं आपको जो है वो ये बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो बड़ा ही खूबसूरत कायदा कुलिया बताया है कि दुनिया में बुराइयां बहुत फैली हुई हैं, और बुराई को दफा करने का तरीका क्या है कि तुम ज्यादा से ज्यादा नेक बनो, और अपनी नेकी से जो बुराइयां फैली हुई हैं उनको शिकस्त दो। और नेक बनने का जरिया बताया गया नमाज, और नमाज जो है एक तरफ अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करेगी, दूसरी वो ताकत नसीब होगी कि बदी का जो मुनज्जिम तूफान है उसका मुकाबला कर सकोगे। तो नेकियां करते जाओ, जैसे बहुत दिनों से निजामे हयात बरहम है, चिराग इतने जलाओ कि तीरगी ना रहे, और हमारा तो काम है कि जलाते चलें चिराग। तो हमारा काम क्या है कि अंधेरों को खत्म करें और रोशनियां जो है वो फैलाएं। चाहते हो चमन में गर लाली तो खूने जिगर अर्जां कर दो, यूं सिर्फ खिजां के मातम से तखलीके बहारां क्या होगी। अब आप देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पांच नमाजें, जुमा दूसरे जुमे तक और रमदान दूसरे रमदान तक, इनके दरमियान होने वाले गुनाहों को दूर कर देते हैं, बशर्ते के कबीरा गुनाहों से इज्तनाब किया जाए। तो जैसे एक नमाज आप फजर की पढ़ते हैं फिर जोहर की पढ़ते हैं, तो बीच में जो गलतियां होती हैं तो अल्लाह उनको माफ करते हैं। फिर इसी तरह जोहर से असर, असर से मगरिब, मगरिब से इशा, तो जब इंसान आता है अल्लाह के पास और रुजू करता है, दुआ करता है, तो गुनाह जो है वो झड़ते हैं। फिर इसी तरह एक और हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर बड़ी नहर हो, वो रोजाना इसमें 5 मरतबा नहाता हो, क्या इसके बाद इसके जिस्म पर मैल कुचैल बाकी रहेगा? सहाबा ने अर्ज किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह 5 नमाजें हैं, इनके जरिए से अल्लाह ताला गुनाहों और खताओं को मिटा देते हैं। इसे बुखारी ने रवायत किया है। फिर आप देखिए कि ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, रावी है अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो, कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मैं शहर के मजाफात में, उसके देही इलाके में या उसके किनारों पर एक औरत का इलाज कर रहा था, तो उसे बगैर छुए मुझसे गुनाह का इर्तकाब हो गया, यानी मैंने उसका बोसा ले लिया, और आप मेरे बारे में हुक्म सादिर फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, वो आदमी जाने लगा तो आपने उसे बुला लिया और यही आयत तिलावत की कि इस गुनाह के बाद तुमने जो नेक अमल किया है इसने इस गुनाह को खत्म कर दिया है, कि अभी अभी जो तुमने नमाज पढ़ी है उसने इस गुनाह के असर को खत्म कर दिया। ये देखकर एक सहाबी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये हुक्म उसी के साथ खास है? आपने फरमाया, ये तमाम मुसलमानों के लिए है। رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، کہ آدمی جب تک کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا، اس کی ہر دو نمازیں ان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بنتی رہیں گی۔ تو پیاری بہنوں، آپ ان احادیث کی روشنی میں دیکھیے کہ اسلام جو ہے وہ دین آف جو ہے وہ ہوپ ہے، ریلیجن آف ہوپ ہے، امید کا دین ہے۔ یہاں مایوسی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس نے گناہ کر لیا اور اب اس کے پاس جو ہے وہ گناہوں کی دلدل سے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ان الحسناتی یذہبن السیئات، یہ ایک جامعہ کلیہ ہے، یہ ایک جو ہے یہ خاص جو ہے وہ ہدایت ہے کہ حسنات جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور حسنات میں مفسرین نے نماز اور اس کی فیملی کی دوسری تمام نیکیوں کو جو ہے وہ مراد لیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ نماز اور اسی طرح کی اور بھلائیاں زیادہ سے زیادہ کی جائیں تو برائیاں مٹ جائیں گی اور شیطان جو ہے اس کو شکست دی جا سکے گی۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ ہدایت، اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ اس کو معمولی مت سمجھیں، بلکہ اس کو سننا، اس کو سمجھنا، اس کو آگے بتانا، یہ بہت بڑی جو ہے وہ نصیحت ہے۔ تو نماز جو ہے وہ اللہ کے راستے کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے تسلی دی ہے، یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک امید دلائی ہے، ایک روشنی کی کرن ہے، کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ گناہ ہو جاتا ہے اور غلطی کر لی، گناہ کر لیا، پھر سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں، اب تو اتنی بڑی غلطی کر لی، اتنا بڑا گناہ کر لیا، اور جس سے جا کے بات بھی کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ کر لیا، اب کیا ہوگا، تو اس کو مایوس کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نیکیوں سے جو ہے وہ برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ اس کی پہلی شکل یہ ہے کہ جو شخص نیکیاں کثرت سے کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اب تک کی زندگی میں جو 40, 50, 60 سال جتنے بھی دن آپ کے گزر گئے، اس میں آپ سے جو جو غلطیاں ہوئیں، جو جو گناہ ہوئے، دنیا نہیں جانتی، کسی کو نہیں پتا، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جانتی ہیں، آپ کا اللہ جانتا ہے۔ آپ اللہ کے حضور گڑگڑائیں، آپ صدقہ کریں، آپ خیرات کریں، توبہ استغفار پڑھیں، سید الاستغفار، آپ عمرہ کر سکتی ہیں تو آپ عمرہ کریں، کیونکہ ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ، اس کے بیچ کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور رزق میں اضافے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ جو جو کر سکتے ہیں کہ میں اللہ کو راضی کروں اور میں اپنے گناہ جو ہے اس کی معافی جو ہے وہ چاہوں۔ تو جس طرح نہانے سے میل کچیل دور ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے نماز پڑھنے سے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ آپ کثرت سے نیکیاں کریں۔ دوسری بات کیا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ برائی کی عادت چھوٹ جائے۔ اور تیسری جو ہے وہ یہ کام کریں کہ جس معاشرے میں جب نیکی کی کثرت ہوتی ہے تو اندھیرے خود بخود جو ہے وہ جانے لگتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر اندھیرا ہے، کیڑے مکوڑے آنے لگ جاتے ہیں، آپ لائٹ آن کر دیں، کیڑے مکوڑے بھاگنے لگیں گے۔ تو گناہوں کی کثرت کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے، اس لیے کہ نیکیوں کا ماحول نہیں ہے۔ تو جب نیکیوں کا ماحول جو ہے وہ بنے گا تو کیا ہوگا کہ یہ کفر، شرک، گناہ جو ہے یہ یہاں سے پھر جو ہے وہ اٹھ جائیں گے، یہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کر، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے بات تھی استقامت کی، اس کا جو ہے وہ ذریعہ اور طریقہ بتایا، نماز اور نیکیاں، اور پھر بات ہو گئی صبر کی۔ اب دوبارہ جو ہے وہ صبر جو ہے اس کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ جو صبر جو ہے اس کی تاکید کی جا رہی ہے، تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہ جو صبر ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ کو کون لوگ پسند ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں، جو حالات हालात जब खराब होते हैं या उन पर आजमाइशें आती हैं तो वो रो धोकर जो है मायूस होकर फिर अमल करना छोड़ नहीं देते, जो हालात के बहाव पर बह नहीं जाते, जो वो कहते हैं कि इतनी मुश्किल है कि फिर अब क्या करते, फिर मैंने ये कर लिया, फिर मैंने ये छोड़ दिया, फिर मैंने जो है वो परेशान होकर फिर जो कुछ मैं कर रही थी उसको करना छोड़ दिया। तो आप याद रखें कि अल्लाह के यहाँ जिन लोगों का अजर मारा नहीं जाता वो लोग जो सबर करते हैं। और सबर क्या होता है, इन्नम सब्रु इंद सदमतिल उला, सदमे की पहली चोट पर सबर करना, तो वकार के साथ शान के साथ डट जाना, जम जाना, बर्दाश्त करना और अल्लाह के रास्ते पर जो है वो जमे रहना, ये है सबर करना। तो हाँ, हालात कैसे ही क्यों ना हो वो अल्लाह के रास्ते से जो है वो हटते नहीं है। तो ये सबर करना जो है ये अंबिया का उसवा है, और जो लोग भी सबर करते हैं वो अपने ईमान के मुताबिक करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा सबर जो है वो अंबिया ने किया, फिर वो लोग जो ईमान के लिहाज से उनके करीब थे, फिर वो लोग जो ईमान के लिहाज से फिर उनके करीब थे। तो जिसका ईमान जितना ज्यादा मजबूत होता है उतना ज्यादा जो है वो सबर करता है। तो यहाँ पर जो है वो सबर की जो है वो ताकीद की जा रही है। और सबर करने वालों के फिर साथ कौन होता है, वस्बिर फइन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मोहसिनीन, के एहसान के दर्जे की नेकी करने वालों का अजर अल्लाह कभी जाया नहीं करता। तो आप अपना मुहासबा करें, मैं अपना मुहासबा करूं, हम सब अपना अपना जायजा लें कि क्या मैं अमली जिंदगी में जो है वो इस्तकामत उसको इख्तियार करती हूँ। नंबर दो, मैं तुगयानी जो इस्लाम और शरीयत की हदूद है क्या मैं उसमें तुगयानी तो नहीं दिखाती। नंबर तीन, मैं बुरे लोगों की सोहबत से बचती हूँ। नंबर चार, मैं हसनात जो है उसको इख्तियार करती हूँ, नमाज कायम करती हूँ और सबर जो है वो करती हूँ, क्योंकि अल्लाह सबर करने वालों का अजर कभी जाया नहीं करता। और एहसान के मानी क्या है, पूरी शान के साथ, पूरे वकार के साथ और बड़े ही हौसले के साथ फिर अल्लाह के रास्ते पर चलना, क्योंकि जो है वो हालात में नशेबो फराज तो आएगा। ये कदम कदम बलाएं, ये सवादे कुए जाना, वो यहीं से लौट जाए जिसे जिंदगी हो प्यारी। इश्क बढ़ता रहा सूए दारो रसन, जख्म खाता हुआ मुस्कुराता हुआ, रास्ता रोकते रोकते थक गए जिंदगी के बदलते हुए जाविये। जंगल की धूप छांव ही जंगल का हुस्न है, जंगल की धूप छांव ही जंगल का हुस्न है, सायों को भी कबूल करो रोशनियों के साथ। तो आजमाइशें मांगनी तो नहीं है, लेकिन जब आ जाए तो उस पे सबर और इस्तकामत जो है वो दिखाना है, नमाज कायम करनी है। फलौला काना मिनल कुरूनी मिन कब्लिकुम उलू बकियती यनहौना अनिल फसादि फिल अर्दी इल्ला क़लीलम मिम्मन अंजैना मिनहुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, फिर ऐसा क्यों ना हुआ, फलौला फिर ऐसा क्यों ना हुआ कि काना मिनल कुरूनी, के हुए उम्मतों में से, मिन कब्लिकुम तुम में से पहले, के उन कौमों में से, उन उम्मतों में से जो तुमसे पहले गुजर चुकी थी, उनमें ऐसा क्यों ना हुआ कि उलू बकियतिन, उलू बकियतिन, यहाँ पे जो बकियतिन लफ्ज है ये अहम है और बकियतिन के मानी है जैसे अकलमंद लोग, बा काफ या इसका रूट है, किसी चीज का अपनी असली हालत पर कायम रहना, बाकी रहना। तो उलू वाले, बकियतिन समझदार, जी होश, तो उलू बकियतिन अकलमंद लोग जो थे, वो कौमें जो गुजर चुकी उनमें ऐसे अकलमंद लोग क्यों ना हुए, यनहौना अनिल फसादी, कि वो मना करते फसाद से, फिल अर्दी जमीन में, कि जब लोग जमीन में फसाद पैदा कर रहे थे, जब लोग गुनाह कर रहे थे, गलतियां कर रहे थे, तो इन्होंने जो उलू बकिया तिन थे, जो अकलमंद लोग थे, इन्होंने जालिमों को फसाद करने से क्यों ना रोका? अहले शर को, अहले मुनकिर को बुरे काम करने से क्यों ना रोका जब वो बुरे काम कर रहे थे? इल्ला कलीलन, मगर थोड़े। ऐसे जो अकलमंद लोग थे ना, जो लोगों को जमीन में फसाद भरपा करने से रोकते, पहले तो कहा कि ऐसे लोग क्यों ना हुए, फिर कहा कि हुए इल्ला कलीलन मगर थोड़े, मिम्मन अंजैना मिनहुम, जिनको हमने इन कौमों से बचा लिया। क्योंकि जिन्होंने लोगों को बुराई करने से रोका, जिन्होंने जो है वो अपने हाथ से बुराई को रोका, अपनी जबान से, अपनी कुव्वत से, ताकत से, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब हमने उन कौमों को जिनको तबाह किया था, जिन्होंने गुनाह किया और हमने उनको तबाह किया, तो हमने इन लोगों को जो था वो बचा लिया। अंजैना, हमने बचा लिया, मिनहुम इनमें से, वत्तबल्लज़ीना ज़लमू, और पीछे लगे रहे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, पैरवी की उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया, मा उतरफू फीही, वो जो मुतरफीन थे। मुतरफीन कौन होते हैं? उतरफू का रूट है ताराफा, और इसके मानी है अमीर, वो जिन्हें आराम दिया गया था, जिन्हें नेमतें दी गई थी। ताराफा जो है इसके मानी है कि अमीर लोग, जिन्हें माल और असबाब अल्लाह ने खूब दिया, तो माल ने उनको जो है वो गुनाहों में मुब्तिला कर दिया। क्योंकि ये जो माल की आजमाइश है, इसमें इंसान जब डूबता है तो फिर हलाल और हराम में तमीज खत्म हो जाती है, फिर वो अल्लाह को भूल जाता है, फिर वो अपने माल, अपना स्टेटस, अपनी दुनिया उसी का होकर रह जाता है। तो ये जो जुल्म करने वाले थे, कुफ्र और शिर्क करने वाले, ये कौन थे? ये फॉलर्स थे। तो लीड करने वाले कौन थे? मा उतरेफू, जो अमीर थे, मा उतरेफू फी, जो बस्ती में जिन्हें ऐश और आराम दिया गया था, वकानू मुजरिमीन, और थे वो गुनागार। जब उन्हें फरावानी के साथ दुनिया का सामान दिया गया तो वो मुजरिम बनकर रहे। फमा काना रब्बू का, और नहीं था तुम्हारा रब, ये युहलिकल कुरा, कि वो बस्तियों को जाया कर दे, वो बस्तियों को हिलाक कर दे, बेजुल्मिन नहक, जुल्म के साथ, वह आहलूहा मुस्लिहून, और उसके बाशिंदे इस्लाह करने वाले हों। ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि लोग जो थे वो अल्लाह को मानने वाले हों, लोग नेक हों, और अल्लाह जो है उनको तबाह बर्बाद कर दे, ऐसा नहीं होता। फलौशा रब्बू का, और अगर चाहता तुम्हारा रब, लजअलन्नासा उम्मतन वाहिदतन, तो कर देता लोगों को एक उम्मत। अगर तुम्हारा रब चाहता तो तमाम इंसानों को एक ग्रोह बना देता। वला यजालून मुख्तलिफीन, मगर अब तो वो मुख्तलिफ तरीकों ही पर चलते रहेंगे। तो यजालूना जो है इसका रूट है ज़े वो लाम ज़ौल, और इसके मानी है कि जैसे जवाल होना, तो वला यजालूना और जवाल नहीं होगा, तो मानी क्या है कि हमेशा रहेंगे, और वो हमेशा रहेंगे मुख्तलिफीन, इख्तलाफ करने वाले। इल्ला मर रहे मर रबुक, मगर वो जिन पर तेरे परवरदिगार ने रहम किया, वले जाले का, और इसीलिए खलकहुम, पैदा किया उनको। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि बचेंगे वो जिन पर तेरे रब की रहमत है, तो इसीलिए तो इसने इन्हें पैदा किया था, वले जाले का खलकहुम, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको जो है वो पैदा किया था। तो इख्तलाफ के लिए ही इन्हें जो है वो पैदा किया, इसका क्या मतलब है? इसलिए नहीं पैदा किया था कि वो लोग, अल्लाह के पैदा करने का मकसद ये नहीं था कि लोग जो है वो इख्तलाफ करें, बल्कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो उसे इंतखाब और इख्तियार की आजादी दी, और इंसान को ये अकल दी कि वो अपनी अकल और पसंद के मुताबिक खुद चॉइस जो है वो अपने पास रखे, यानी फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस, के वो अच्छे रास्ते पे चले या बुरे रास्ते पर। तो अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते जो हैं उनमें से किसी एक रास्ते को इंतखाब करने की इंसान को जो है वो आजादी अता की, अच्छा अच्छे रास्ते पे चाहे चले या बुरे रास्ते पर, जबरदस्ती नहीं की। और फिर अल्लाह ताला ने रास्ते बताने के लिए अंबिया को भेजा, और जिन्होंने बताया कि ये सीधा रास्ता है, ये बुरा रास्ता है। तो अब लोगों की अपनी मर्जी थी कि वो सीधे रास्ते पर चलते या बुरे रास्ते पर। अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्लाह को जरूरत नहीं थी कि लोगों को जबरदस्ती नेक बनाता। अल्लाह ने तो इम्तिहान लेने के लिए लोगों को पैदा किया, और अब लोगों की अपनी मर्जी थी कि वो किस रास्ते पर चलना चाहते थे। अगर अल्लाह चाहता तो लोग इख्तलाफ करते ही ना, सारे ही मुसलमान होते, लेकिन ये अल्लाह का तरीका नहीं है। और अल्लाह ताला जो है वो इम्तिहान लेना चाहता है, तो यहाँ पे इसी चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है। वलिज़ालिका खलकहुम, इसी आजादी इंतखाब और इख्तियार के लिए तो अल्लाह ने इन्हें पैदा किया था। वतम्मत कलिमतु रब्बिका, और तेरे रब की वो बात पूरी हो गई। क्या लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन, कि मैं जरूर बजरूर भर दूंगा जहन्नुम को, मैं जरूर बजरूर जो है वो भर दूंगा जहन्नुम को, मिनल जिन्नति जिन्नों से, वन्नासी और इंसानों से, अजमाइन सब के सब। अब यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये ऐलान किया था कि जो मेरे नाफरमान हैं, जो मेरी अतात नहीं कर रहे, तो उनको मैं जो है वो जन्नत की बजाय जहन्नुम में डालूंगा। जैसे हदीस में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत और दोजख आपस में लड़ पड़े, झगड़ा किया इन्होंने। जन्नत ने कहा कि क्या बात है कि मेरे अंदर वही लोग आएंगे जो कमजोर और मुआशरे के गिरे पड़े लोग होंगे। जहन्नुम ने कहा मेरे अंदर तो बड़े बड़े जब्बार और मुतकब्बिर किस्म के लोग होंगे। अल्लाह ताला ने जन्नत से कहा, तू मेरी रहमत का इजहार है, तेरे जरिए से मैं जिस पर चाहूं अपना रहम करूं। और जहन्नुम से अल्लाह ताला ने फरमाया, तू मेरे अजाब का इजहार है, अजाब की मजहर है, तेरे जरिए से मैं जिसको चाहूं सजा दूं। अल्लाह ताला जन्नत और दोजख दोनों को भर देगा, जन्नत में हमेशा इसका फजल होगा, हत्ता कि अल्लाह ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जन्नत के बाकी मांदा रकबे में रहेगी, और जहन्नुम जहन्नमियों की कसरत के बावजूद नारा लगाएगी, हल मिन मजीद, क्या और है, यानी और चाहिए, यहां तक कि अल्लाह इसमें अपना कदम रखेगा, जिस पर जहन्नुम पुकार उठेगी, पत पत व इज्जतिक, बस बस तेरी इज्जतो जलाल की कसम। इसे सही बुखारी ने रवायत किया है। तो यहां पर जो है ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने तो पहले ही बात बता दी थी कि जो मेरे नाफरमान हैं उनके लिए मैंने जहन्नुम बनाई हुई है, और मैं जहन्नुम से जो है वो, और मैं अपने नाफरमानों से जहन्नुम को भर दूंगा। अल्लाहुम्मा ला तजलना मिनहुम, ए अल्लाह तू हमें इन लोगों में शामिल ना करना। और कौन होंगे? जिन होंगे और इंसान होंगे जो कि अल्लाह के नाफरमान होंगे, सब के सब उसमें डाले जाएंगे। वकुल्लन नकुसु अलैका मिन अम्बा रसूली, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पैगंबरों के किस्से जो हम आपको सुनाते हैं, नकुसु हम बयान करते हैं, अलैका आपको, मिन अम्बा रसूली, रसूलों की खबरें, मान सब्बितु बिही फुआदक। तो ये रसूलों के जो वाकयात और किस्से हैं, इन्हें सुनाने का मकसद क्या है कि इनके जरिए से तुम्हारे दिल को मजबूत करना चाहते हैं। नुसब्बितु सा बा ता इसका रूट है, और इसके मानी है साबित कदम रखना, तसल्ली देना, जमाना, कायम रखना, जैसे होता है ना सबाते कल्ब। तो नुसब्बितु हम तसल्ली दे, मजबूत करें बही इन वाकयात के जरिए फुआदक। और आप ये लफ जो है ये पहले भी पढ़ चुकी हैं कि फुआदक जो है किसे कहते हैं, जैसे अफिदा, अफिदा और फुआद जो है फिर इसकी जमा है। तो कहा कि इसके जरिए से हम आपके दिल को मजबूत करते हैं। तो जितने भी अंबिया के आपने वाकयात पढ़े हैं, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ واقعات سنانے کا مقصد آپ کو تسلی دینا ہے کہ اگر اہل مکہ آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لا رہے، تو بہت سے ایسے پیغمبر گزر چکے ہیں کہ جن پر ان کی قومیں ایمان نہیں لائی، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، تو لیکن ان پیغمبروں نے ان حالات میں کیا کیا، ان سب نے جو ہے وہ صبر کیا. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور آپ کے توسط سے تمام امت مسلمہ جو ہے ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور وَجَاءَ کا اور پہنچ گیا، فی هَذِهِ الْحَقُّ اس صورت میں سچی بات، کہ یہ جو صورت ہے اس میں سے جو واقعات سنائے گئے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ کو جو ہے وہ حق مل گیا، سچی بات مل گئی. نمبر دو، وَمَوْعِظَةٌ اور نصیحت، واز نصیحت، وَذِكْرَى اور یاد دہانی، بیداری، للمومنین ایمان لانے والوں کے لیے. وَقُلْ اور کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کو، لا یومنون جو ایمان نہیں لاتے، تو رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، آپ ان سے کہہ دیجئے اعملوا علی مکانتکم کہ تم اپنی جگہ پر اپنے طریقے پر عمل کرتے جاؤ، ان عاملون اور ہم بھی جو ہے وہ عمل کرتے رہتے ہیں، کہ تم اگر نہیں مانتے تو نہ مانو، تم انکار کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو اور ہم اپنی جگہ پر عمل جو ہے وہ کرتے جائیں گے. اس کے کیا معنی ہے کہ اگر تم کفر اور شرک کرنے سے نہیں رکتے تو ہم جو ہے توحید کی دعوت دینے سے اور اس پر عمل کرنے سے کیسے رک جائیں. یہ وہی بات ہے، لکم دینکم ولی دین، وانتظروا اور تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون اور ہم بھی منتظر ہیں. تو یہاں پر انہیں جو ہے وہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم جو ہے اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو کرتے جاؤ، تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو اور انتظار میں ہو تو ٹھیک ہے، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ عذاب کی علامتیں ایک ایک کر کے جو ہے وہ نمایاں ہوتی چلی جاتی ہیں، اور عذاب کب آئے گا. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے پاس ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا علم. تو قیامت کا علم، عذاب کا علم، یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا تعلق امور غیب سے ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کب جو ہے یہ بات پوری ہوگی. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ لٹائے جاتے ہیں. فَاعْبُدْهُ پس بندگی کرو اسی کی، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور بھروسہ رکھو اسی پر، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں پروردگار تمہارا بے خبر، اما تعملون اس چیز سے جو تم کرتے ہو. تو یہ جو آخری آیت ہے اس میں اللہ پر بھروسہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور نچوڑ کے طور پر یہ بات رکھ دی گئی کہ لوگوں، اے ایمان لانے والو، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. پہلی چیز کیا ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، توکل علی اللہ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. دوسری بات، فَاعْبُدْهُ اسی کی عبادت. جب عبادت کرو گے تو کیا کرنا ہے، معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دینا ہے. سارے معاملات فیصلے کے لیے اللہ ہی کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور ہر منزل پر، ہر قدم پر، ہر مشکل میں، ہر مرحلے پر اللہ تمہارے ساتھ ہے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو اپنی مشکلات میں اللہ سے لو لگائیں، نماز قائم کریں، صدقات دیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور جو بھی آزمائش ہے، جو بھی پریشانی ہے، دنیا نہیں جانتی، اللہ تو جانتا ہے نا. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، آپ عبادت میں لگے رہیے، آپ کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، اللہ ان کے بھی کرتوت دیکھ رہا ہے، انہیں سزا دے کر رہے گا اور آپ کو جزا دے گا. تو میرے اور آپ کے لیے بھی اس میں عمل کا یہی پیغام ہے. یہ ہے سورت ہود، بڑی ہی زبردست خوبصورت سورت، اور یہ وہ سورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھا کر دیا، کہ آپ کی जो दाढ़ी मुबारक थी उसमें सफेद बाल जो थे वो नजर आने लगे, आपके सर में सफेद बाल नजर आने लगे, और पिछली कौमों का इनकार, उन पर अल्लाह के अजाब के कोड़े का बरसना, और अल्लाह का ये हुक्म कि आप इस्तकामत दिखाइए और जर्रा बराबर इधर उधर को ना होइए, इस गम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बूढ़ा कर दिया। और आप तो सबसे बढ़कर अमल करने वाले थे और इस्तकामत दिखाने वाले थे, और अब आप देख लें कि फिर हमारा हाल जो है वो क्या है और हम जो है वो कहाँ पर जो है वो खड़े हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको बेहतरीन अमल करने वाला बनाए, नेकियों में आगे रहने वाला और आगे ही आगे बढ़ने वाला, और अपने गुनाहों का जो है वो गुनाहों का एहसास करके फिर अल्लाह से गुनाहों की माफी चाहने वाला बना दे। तो आइए हम जो है वो अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला तू हमारे गुनाहों को माफ कर दे। اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة العين واصلح لي شعني كله لا اله الا انت لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اے اللہ تو ہم پر رحم کر یا خالق یا مالک یا اللہ یا حنان یا منان یا اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا اے پروردگار اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے کوئی بھول ہو گئی کوئی خطا ہو گئی تو اے اللہ تو اس پر ہماری گرفت نہ کرنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا اے ہمارے پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا اے اللہ ہم بڑے ہی کمزور ہیں ہم بڑے ہی جو ہے وہ ضعیف ہیں اے اللہ تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اے ہمارے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھنا تو ہمیں ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈال جس میں ہم پورا نہ اتر سکے اے اللہ تو ہمیں جو ہے وہ آزمائشوں سے بچا لے ہم بڑے ہی کمزور لوگ ہیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آپ ہمیں معاف کر دیجئے آپ ہمیں بخش دیجئے آپ ہم پر رحم کیجئے آپ ہی ہمارے مولا ہیں آپ ہی ہمارے مالک ہیں اور اے اللہ تو ہمیں ہمارے دین کو ہمارے اسلام کو دوسروں کے لیے رسوائی کا ذریعہ نہ بنا اے اللہ تو ہمیں اسلام کا سرمایہ بنا دے تو اسلام کے لیے بوجھ نہ بنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب عوزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا كما ربياني صغيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وحي لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وحي لنا من أمرنا رشدا یا رب العزت قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، کبھی نفس جو ہے وہ آڑے آتا ہے اور کبھی ماحول حالات اور زمانہ، اور اے اللہ اصحاب کہف نے جس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کی تھی، اے اللہ تو اپنی طرف سے ہم پر اپنی رحمتیں نازل کر دے، اور اے اللہ تو ہمیں رشد دے دے، تو ہماری رہنمائی کر دے، تو ہمیں بتا دے کہ ہر معاملے میں صحیح فیصلہ کیا ہے، کہ اپنے حالات اور اپنے مسائل میں رہتے ہوئے ہمیں تو بتا دے کہ ہم کیا کریں، اور اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر پکڑ پکڑ کر چلا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے اللہ تو ہم سب پر رحم کر. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے اللہ تو ہمیں استقامت دے دے، اے اللہ ہم جو ایمان لائے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا، اے اللہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اور سب کے لیے تو ہمیں آزمائش نہ بنا. اے اللہ ہمیں دیکھ کر لوگ دین کے قریب آئیں، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری عبادات، ہمیں دیکھ کر لوگ دین سے بدکے نہیں، دین سے دور نہ جائیں. اے اللہ تو ہمارے حال کو، ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا کر دے، ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن سے اچھا کر دے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. या हय्यू या कयूम या अल्लाह, या हय्यू या कयूम या अल्लाह, रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या रब्बुल इज़्ज़त, यहाँ तक तूने हमें पहुंचाया, और अल्लाह तू आगे भी ईमान, सेहत, सलामती के साथ वक्त में बरकत देते हुए हमें आगे आगे नेकियों के रास्ते पे चलाता चला जा। और अल्लाह तू हमारे माथे के बालों से पकड़ कर हमें सिराते मुस्तकीम पर चला, तू हम में से हर एक नेक और जायज ख्वाहिश को पूरा कर दे। अल्लाह तू हम में और हमारे शोहरों में मोहब्बत दे दे, या रब्बुल इज्जत हम में और हमारे औलादों में मोहब्बत दे दे, हम में और हमारे बहन भाइयों में, दोस्तों में मोहब्बत दे दे, हमें सिला रहमी करने वाला बना। अल्लाह हलाल रिज्क पर कनात दे दे, सेहत कामला अता कर। अल्लाह जो बीमार हैं, हम सब बीमार हैं, रूहानी भी जिस्मानी भी, अल्लाह तो हम सबको सेहत कामला अता कर। जो हज पर जाने वाले हैं उनको हज मबरूर दे, और जो हज कर चुके हैं उनको अपने हज की हिफाजत करने वाला बना। या अल्लाह तू हमें अपनी जबान की हिफाजत करने वाला बना, तू हमारी आंखों में हया दे दे, तू हमें अपने कानों की हिफाजत करने वाला बना। अल्लाहुम्मा इहदिनी फीमन हदईत, व आफिनी फीमन आफईत, व तवल्लनी फीमन तवल्लईत, व बारिक ली फीमा आतैत, व क़िनी शर्र मा क़ضيت, फ इन्नक तक़दी व ला युक़्दा अलैक, इन्नहु ला यज़िल्लु मन वलैत, इन्नहु ला यज़िल्लु मन वलैत, वला यईज़ु मन आदैत, तबारकत रब्बना व तआलैत, व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहाबिही अजमईन, बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन, आमीन सुम्मा आमीन।